पृष्ठ संख्या 137। अगला पैराग्राफ। 20वीं सदी के अंतिम दशक में प्रकाशित हिंदी उपन्यासों में जो स्त्री विमर्श हमें देखने को मिलता है, उसमें स्त्री की यौनिकता का पक्ष प्रधान रूप से शामिल किया गया है। स्त्री एवं पुरुष रचनाकारों ने स्त्री के यौन पक्ष एवं उसके यौन व्यक्तित्व को भी महत्वपूर्ण मानते हुए उसके मुक्ति संघर्ष को संपूर्णता प्रदान करने की कोशिश की है। समकालीन स्त्री विमर्श यह दृढ़ता से स्वीकारता है कि स्त्री की आज़ादी का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि उसकी यौनिकता को पूर्ण एवं स्वायत्त इकाई का दर्जा न मिले। अगला पैराग्राफ। स्त्री की यौनिकता की दृष्टि से अगर हम परंपरागत सामाजिक जीवन मूल्यों का अवलोकन करें तो स्त्री की यौनिकता का दमन और उस दमन के परिणाम स्वरूप स्त्री की यौन निष्क्रियता का महिमा मंडन करने की परंपरा हमारे आँखों के सामने एकदम जीवंत हो उठती है। दूसरे शब्दों में इस पुरुष सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास स्त्री यौनिकता के दमन का इतिहास है। स्त्री का यौन व्यक्तित्व पुरुष सत्ता को हमेशा से डराता रहा है। यही वजह है कि उसकी यौनिकता के प्रति दमनकारी एवं अमानवीय व्यवहार किए गए। योनि सुन्नत से लेकर चेस्टिटी बेल्ट बांधने तक की परंपरा और संस्कृति के प्रति पुरुष जाति के अवचेतन में बसी स्त्री के मुक्त यौन के प्रति भय ही काम करता है। पृष्ठ संख्या 138। आश्चर्य नहीं कि स्त्री दासता के इतिहास में युवा स्त्री पर सबसे अधिक श्लोक और कानून लादे गए हैं। कम उम्र में विवाह करने की प्रथा हो, वैधव्य की अवधारणा हो, बुर्खा पहनने की अनिवार्यता हो या कौमार्यता को बचाए रखने का मूल्य, इन सबके पीछे स्त्री की यौनिकता के प्रति व्याप्त भय ही प्रमुख रहा है। बाकी परिस्थितियां तो गौण ही रही हैं। स्त्री को योनि और गर्भ मात्र में तब्दील कर देने की पुरुष प्रथा अनजाने में और अनचाही घटना नहीं है, बल्कि यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है। जिसकी शिकार स्त्री जाति हजारों वर्षों से हो रही है। आधुनिक स्त्री विमर्श इसी षड्यंत्र को अपना निशाना बनाता है। अगला पैराग्राफ। समकालीन स्त्री विमर्श स्त्री पुरुष की यौनिकता संबंधी पूर्वाग्रहों एवं अवधारणाओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के पक्ष में है। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में चल रहे स्त्री विमर्श का यह भी एक बड़ा मुद्दा है। उदारीकरण का प्रभाव एक सीमित अर्थ में ही सही स्त्री पुरुष यौनिकता संबंधी बहस पर भी पड़ा है। यौ भी स्त्री या तो घर में सजाकर रखी जाती रही है या फिर बाजार में खरीदी जाती रही है। घर में रखे जाने की परंपरा ने उसे गृह लक्ष्मी एवं जननी का ऊंचा सिंहासन दिया, तो बाजार में छोड़े या रखे जाने की परंपरा ने उसे यौन दासी, वैश्या और इस उत्तर आधुनिक युग में कॉल गर्ल जैसा निंदनीय नाम दिया। मानव सभ्यता के इतिहास में स्त्री की यौनिकता को शायद ही कभी मानवीय गरिमा प्राप्त हुई हो। वह स्वयं के लिए नहीं बल्कि पुरुष के लिए है, पुरुष उसके लिए नहीं है बल्कि वह पुरुष के लिए है। यही विचार सदियों से स्त्री पुरुष की यौनिकता संबंधी परिभाषाओं एवं व्याख्याओं के केंद्र में रहा है। जैविक एवं ऐतिहासिक कारणों से एक बार जो पुरुष समाज ने अपने को स्त्री जाति की तुलना में श्रेष्ठ माना तो फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे स्त्री की यौनिकता और देह दोनों उसकी निजी और सामूहिक संपत्ति में तब्दील होती चली गई। फिर कैसी स्त्री यौनिकता एवं स्वायत्तता। यह ऐतिहासिक बदलाव एक सार्वभौमिक सच का दर्जा बहुत पहले पा चुका है, यानी स्त्री की यौनिकता एवं उसकी देह पुरुष की यौनिकता एवं उसके देह के लिए ही है, यही परिभाषित व्याख्यायित एवं प्रचारित होने लगा जो आज तक जारी है।